श्लोक गौर्गः कामदुधा सम्यक् प्रयुक्ता स्मर्यते बुधै दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयुक्तुः सैव शंसति। शब्द और अर्थ की दृष्टि से सही ढंग से प्रयोग की हुई वाणी विद्वानों के द्वारा कामधेनु गौ बताई जाती है, किंतु गलत दोषपूर्ण ढंग से प्रयोग की हुई वही वाणी प्रयोग करने वाले का गोत्व सूचित करती है। आचार्य दंडी ने षष्ठ श्लोक में वाणी के समीचीन प्रयोग का महत्व अन्वय एवं व्यतिरेक विधि से बताया है। आचार्य पतंजलि के अनुसार उदात्तादि स्वरों की और वर्ण विन्यास की दृष्टि से दोषयुक्त और अर्थ की दृष्टि से गलत ढंग से प्रयुक्त शब्द अपने प्रतिपाद्य अर्थ को प्रकट नहीं करता। वह वाणी के रूप में वज्र है जो न केवल प्रयुक्ता को नष्ट करता है अपितु उसे भी नष्ट करता है जिसके लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है। विशेष की प्राप्ति में निपुण जो मनुष्य व्यवहार करते समय शब्दों का प्रयोग उचित रूप से करता है, वाणी के योग शब्दार्थ संबंध को जानने वाला वह मनुष्य लोक में सब पर उत्कर्ष प्राप्त करता है और परलोक में अंतरहित सुख। समीचीन रूप से समझा हुआ शास्त्र का अनुसरण करने वाला अच्छी तरह से प्रयुक्त एक शब्द भी इस लोक में और परलोक में इच्छानुसार फल देता है। भरत ने भी एक अन्य प्रसंग में अपप्रयोग को बहुत विनाशकारी बताया है। पतंजलि और भरत के मंतव्य को ही आचार्य दंडी ने यहाँ बुधों के कथन के रूप में बहुत नरम करके प्रस्तुत किया है। स्मरते बुधै प्रस्तुत श्लोक में तीन बार प्रयुक्त गो शब्द क्रमशः वाणी, गाय और बैल अर्थ में है। वाणी से शब्द और अर्थ अभिप्रेत होते हैं। प्रसंग काव्य का है, अतः काव्य के शब्द और अर्थ में सौंदर्य कारक तत्वों का आधान करके उनका प्रयोग करना वाणी का सम्यक प्रयोग है। दंडी से प्राचीन आचार्यों तथा स्वयं दंडी ने वाणी के सम्यक प्रयोगों को अलंकार नाम दिया है, अर्थात इन लोगों के मत में अलंकार शब्द काव्य शरीर पर आरोपित कटक कुंडलादि के समान शोभावर्धक बाह्य धर्मों का ही वाचक नहीं है, अपितु शब्दार्थगत आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के सौंदर्याधायक शोभाकारक तत्वों का ग्राहक है। यही कारण है कि दंडी ने क्रियाविधि के विषय के रूप में अलंकार शरीर और अलंकार दो ही चीजें बताई हैं। इसके अतिरिक्त संध्यंग प्रत्यंग और लक्षण आदि नाट्य शास्त्रोक्त सौंदर्याधायक तत्वों की भी अलंकार के रूप में ही माना है। दंडी का अलंकार का लक्षण भी इसी तथ्य का पोषक है। उन्होंने काव्य के शोभाकारक धर्मों को अलंकार बताया है, न कि पूर्वतः विद्यमान शोभा के पोषक धर्मों को। इसीलिए दंडी यदि अष्टविध रस को भी अलंकार ही कहते हैं तो वे रस का अवमूल्यन नहीं करते, वे तो उन्हें शोभाकारक अन्य धर्मों की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष युक्त मानते हैं। इतना ही नहीं, श्लेष प्रसाद समता आदि गुण भी दंडी के यहाँ अलंकार ही हैं। इस प्रकार की सौंदर्य गुण युक्त अर्थात अलंकृत होने से रसावह वाणी अपने प्रयोक्ता कवि की इच्छा पूर्ण करने में पूरी तरह समर्थ है। दंडी के मत में काव्य रचना में कवि का प्रयोजन लोकोत्तर पदार्थों का साधिकार वर्णन, विदग्ध गोष्ठियों में विहार, लोक रंजन, सहृदयों को आनंद लाभ, विदग्धों का अतितोष, हृदय ग्राहिता, सत्पुरुषों में काव्य का आदर और कल्पांतर स्थायी कीर्ति है। सम्यक प्रयोग वाले शब्दार्थ से निबद्ध काव्यवाणी कवि के अभिष्ट का कवि जब चाहे तब दोहन करने में समर्थ है। गाय भी दुग्धा के द्वारा सम्यक प्रयुक्त होने पर उसके शरीर की पुष्टि और वत्स के प्रति वात्सल्य को भलीभांति जागृत करने पर ही दुग्धा की इच्छा के अनुकूल भरपूर दूध देती है। गाय के शरीर की पुष्टि कामदोहन में साधारण निमित्त है, असाधारण निमित्त तो वत्स के प्रति गाय के वात्सल्य का जागृत होना ही है। प्रकृति में यह वत्स अर्थ है। सम्यक प्रयोग का विपरीत भाव दुष्प्रयोग है। शब्द और अर्थ श्रोता को जिसके कारण वैरस्य होता है, उद्वेग होता है, ऐसा प्रयोग दुष्प्रयोग है। दंडी ने इसके लिए दोष शब्द का प्रयोग किया है। काव्य से उद्वेग सौंदर्य भंग होने पर होगा। दंडी के अनुसार काव्य में दोष कवि के प्रमाद से आता है। कवि में यदि कौशल है तो वह शोभा विधातक बातों को भी शोभादायक तत्वों में बदल सकता है। यदि उपर्युक्त सौंदर्य कारक तत्वों का परिहार करने और सौंदर्य विधातक तत्वों का उपादान करके शब्दार्थ का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसे शब्दार्थ से श्रोता को आनंद के स्थान पर वैरस्य ही होगा। इस प्रकार की वैरस्योत्पादक तथा उद्वेगजनक वाणी प्रयोक्ता का गोत्व ही व्यक्त करती है। दोग्धा के दुष्प्रयोग से अप्रसन्न होकर गाय यदि दूध न देकर लात मारने लगे तो यह दोग्धा की गलती मानी जाएगी, गाय की नहीं। मृच्छकटिक में वसंत सेना के प्रति शकार और चारुदत्त के प्रणय निवेदन के निम्नोद्धृत दो प्रकार दंडी के क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय वाले इस कथन के उदाहरण हैं। क्या जा रही है, दौड़ रही, भाग रही, गिरती पड़ती, स्यानी हो खुश न मरेगी, तो रुक जा, दिल मेरा भून रहा काम से बेचारा, अंगारों की ढेरी पर पड़ा मांस का जो टुकड़ा, ख सदा रात का प्रथम भाग बीतता मेरा जागते और बीतता निशा आहे भरते, हे आयतन नयने, यह रात का प्यारा प्रथम भाग हुआ तुमसे संयुक्त हुए मेरे शोक का नाशक आज। इस श्लोक में उपमान के सम्यक और दुष्ट प्रयोग के माध्यम से दंडी की उपमेय काव्य के दोनों अवयवों शब्द और अर्थ का सम्यक और दुष्ट प्रयोग अभिप्रेत है। भिन्न वाणी गाय और बैल अर्थ वाले गो शब्द की आवृत्ति से पदगत यमक है। वाणी पर काम दुधात्व विशिष्टता से युक्त गाय का एवं प्रयोक्ता पर बैल का आरोप मूर्खत्व की समानता के कारण किया है। अतः प्रथम आरोप से अधिकारूढ़ वैशिष्ट्य रूपक है और द्वितीय से निरंग केवल रूपक है। श्लोक तदल्पमपि नोपेक्ष्यम काव्ये दुष्टम कथंचन स्याद वपुः सुंदरमपि श्वित्रेणैकेन दुर्भगम। इसलिए काव्य में किसी भी प्रकार के थोड़े से भी दोष की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शरीर सुंदर होते हुए भी एक सफेद दाग से असेव्य हो सकता है। दुष्ट काव्य की पिछले श्लोक में व्यतिरेक कथन से सूचित हेयता सातवें श्लोक में स्पष्ट रूप से बताई है। दोषयुक्त वाणी प्रयोक्ता की मूर्खता सूचित करती है, इसलिए काव्य में शब्द अर्थ और इनके संबंध से संबद्ध किसी भी प्रकार का थोड़ा सा दोष भी उपेक्षा के योग्य नहीं है। अर्थात काव्य को दोषयुक्त नहीं बने रहने देना चाहिए, उस दोष का परिहार किया ही जाना चाहिए। अपने इस कथन को आचार्य ने एक लौकिक उदाहरण से स्पष्ट किया है। सामुद्रिक लक्षणों से युक्त अवयव विन्यास, उत्तम वर्ण, कोयल की सी मीठी आवाज, छलकता यौवन आदि प्रत्येक दृष्टि से सुंदर शरीर भी उसके एक छोटे से अंश में केवल बाहर से दिखाई देने वाले अर्थात अर्थ क्रियाकारिता में किसी भी प्रकार की बाधा न करने वाले एक सफेद दाग से युक्त होने पर अनाकर्षक, दुसेव्य, वित्तृष्णाकारक, उत्वेजक एवं अतएव हे हो जाता है। अर्थात शब्दार्थ के बाह्य और आंतरिक सौंदर्य के होते हुए भी एक अल्प से बाह्य दोष के कारण ही वह काव्य की सुधि सहृदयों को उद्वेगजनक हो जाता है। अतः काव्य में दोष का परिहार आवश्यक है। काव्य में दोषों के परिहार की आवश्यकता भरत ने भी उपमा विधान से बताई है। दोषयुक्त शब्दों से काव्य उसी प्रकार शोभादायक नहीं पाता जिस प्रकार दीक्षा के उपरांत विधि के अनुकूल वृत्तांत किंतु दीक्षित के शस्त्र त्याग विधान के प्रतिकूल शस्त्र और कवच से सन्नद्ध यजमान से यज्ञ क्रिया और हाथ में शास्त्रानुसार कमंडल तथा अपाढ़ आदि दंड धारण करने वाले द्विज ब्रह्मचारियों के साथ वेश्या शोभा नहीं पाती। अर्थात जिस प्रकार समाज में ऐसे यजमान और ब्रह्मचारियों के साथ वेश्यानिंद है, उसी प्रकार दोषयुक्त का भी निंद है। दोषयुक्त का भी की निंदा में भामा बहुत मुखर है। उनका कथन है कि काव्य एक शब्द भी दोषयुक्त नहीं होना चाहिए। दोषयुक्त काव्य से कवि की निंदा उसी प्रकार होती है जिस प्रकार दोषयुक्त पुत्र से पिता की निंदा होती है। कवि नहीं होना क्योंकि पाप नहीं है, न कोई बीमारी है और न कोई अपराध, किंतु कुकवि होना तो मनीषी लोग साक्षात मृत्यु ही बताते हैं। वाग्भट का कहना है निर्दोष काव्य कवि को स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ा देता है। श्लोक के दो वाक्यों में काव्य और शरीर की उपमेयोपमानता वाच्य नहीं है। दोनों का एक ही साधारण धर्म हेयता अलग अलग निषेध मुख नोपेक्षम दुर्भगम शब्द से बताई है। अतः यहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार तृतीय पाद में अनुष्टुप जाति का न विपुला भेद है। शास्त्र की आवश्यकता। श्लोक गुण दोषान शास्त्रज्ञः कथम विभज्यते जनः किमन्धस्याधिकारोस्ति रूप भेदोपलब्धिषु। शास्त्र नहीं जानने वाला गुणों और दोषों का विभाग कैसे कर सकता है? रूप के भेदों का अनुभव करने में क्या अंधे का अधिकार होता है? प्रस्तुत श्लोक में आचार्य दंडी ने वाक्य के पूर्वोक्त सम्यक और दोषयुक्त प्रयोग का भेद समझने के लिए शास्त्र की आवश्यकता बताई है। काव्य की उपादेयता के हेतु सम्यक प्रयोग को यहाँ गुण कहा है और हेयता के हेतु दोषयुक्त प्रयोग को दोष। काव्यादर्श में गुण शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में मिलता है, क अच्छाई, ख दोष के साथ उसके विपरीत भाव में अर्थात काव्य को शोभायुक्त बनाने वाले धर्म अर्थ में, ग वैदर्भ मार्ग में काव्य शोभा के विशेष हेतु श्लेष प्रसाद समता आदि दस तत्वों के अर्थ में। यहाँ यह द्वितीय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दंडी ने आगे इस अर्थ में अलंकार शब्द का प्रयोग भी किया है। अलंकार शब्द वामनादि सम्मत काव्य में पूर्वतः विद्यमान शोभा में अतिशय लाने वाले अनित्य धर्मों के लिए सीमित अर्थ में प्रयुक्त नहीं है, अपितु काव्य शोभा कारक नित्य अनित्य अंतरंग और बहिरंग सभी प्रकार के धर्मों के लिए व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यही कारण है कि आठों रस भाव आदि ही नहीं संध्यंग वृत्यंग आदि भी दंडी के अनुसार अलंकार ही हैं, क्योंकि ये काव्य के शोभाकारक धर्म है। यह पीछे पृष्ठ 14 में कहा जा चुका है। जिस प्रकार दुष्प्रयोग सम्यक प्रयोग का विपर्यय है, वैसे ही दोष भी गुण का विपर्यय है। अतः काव्य के बाह्य और आंतरिक चारुत्व को भंग करके सहृदय के मन में वैरस्य और उद्वेग उत्पन्न करने वाली कमी को दोष कहते हैं। काव्य के इन दोनों शोभा विधायक और शोभा विघातक हेतुओं का ज्ञान इनका स्वरूप निरूपण करने वाले शास्त्र को जाने बिना कैसे कोई कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। आचार्य ने इस कथन की पुष्टि भी पिछले श्लोक के समान लोकवृत्त को अलंकृत रूप से प्रस्तुत करके की है। क्या अंधे को रूप के भेदों की प्रतीति का अधिकार है? अर्थात जैसे रूपक के श्वेत कृष्ण आदि स्थूल भेदों का और परस्पर मिश्रण से निष्पन्न सूक्ष्म भेदों का ज्ञान स्वच्छ निर्दोष लोचन के बिना संभव नहीं है, वैसे ही शास्त्र रूपी निर्मल लोचन के बिना काव्य के स्थूल और सूक्ष्म गुण दोषों का ज्ञान भी संभव नहीं है। अतः काव्य शास्त्र लोचन के समान आवश्यक है। प्रकृति उपमेय वाक्य प्रश्नात्मक होने के कारण इस अपकृत उपमान वाक्य को भी प्रश्नात्मक रखा गया है। उपलब्धियों में बहुवचन रूपों के बहुत भेद होने के कारण दिया है। वादि जंघाल देव का यह कथन उचित ही है कि अंधे को तो रूप की ही उपलब्धि का अधिकार नहीं है। रूप के भेद की उपलब्धि तो दूर की बात है, अतः भेद शब्द का प्रयोग शिथिल वचन है। दंडी ने पिछले श्लोक में स्वित्र दोष का उपमान के रूप में प्रयोग काव्य की बाह्य शोभा के विघातक तत्वों की दृष्टि में रखकर किया है। प्रकृति के श्लोक में अंध उपमान से काव्य शरीर की आंतरिक क्रियाकारी अंगों की विकलता अर्थात अर्थगत शोभा के विघातक धर्म दृष्टि में प्रतीत होते हैं। यहाँ एक साधारण धर्म भेदोपलब्धि को दो वाक्यों में पृथक पृथक कहा है। दोनों वाक्यों में साम्यवाची न होकर गम्य है, इसलिए पिछले श्लोक के समान प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। जीवानंद विद्यासागर और रामचंद्र मिश्र ने दृष्टांत बताया है। श्लोक अतः प्रजानां व्युत्पत्तिम भिसंधाय सूरयः वाचां विचित्र मार्गाणां निवबंधु क्रियाविधिम। इस कारण पूर्व विद्वानों ने लोगों के ज्ञान को प्रयोजन के रूप में दृष्टि में रखकर नाना प्रकार की शैलियों वाली वाणी की रचना के विधान प्रक्रिया को ग्रंथों के रूप में निबद्ध किया है। आचार्य दंडी ने पिछले श्लोक में काव्य की उपादेयता और हेयता के हेतुओं को जानने के लिए शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता बताई है। प्रकृति श्लोक में पूर्वाचार्यों द्वारा काव्य शास्त्र का प्रणयन किया गया, यह इस शास्त्र के अधिकारी और विषय सहित बताया है। काव्य के गुण तथा दोष के ज्ञान से रहित या अल्पज्ञ लोगों को उनका परिनिष्ठित ज्ञान प्राप्त होवे, जिससे वे सत्काव्यों का आनंद ले सके और स्वयं सत्काव्य की रचना में समर्थ हो सके, इस उद्देश्य से पूर्व मनीषियों ने काव्य शास्त्र का प्रणयन किया। काव्य में देश काल और पात्र के भेद से नाना प्रकार के लोक व्यवहार का प्रणयन, नाना प्रकार की रुचि प्रवृत्ति और सामर्थ्य वाले कवियों द्वारा अभ्यूहित नाना प्रकार से किया जाता है। अतः काव्य की नाना विधता का कोई अंत नहीं है। इस नाना विधता को दंडी ने विचित्र मार्ग शब्दों से कहा है। आगे मार्ग शब्द का प्रयोग एक अभिव्यक्ति की कोमलता पर आधारित सहृदय प्रिय वैदर्भ अथवा दाक्षिणात्य शैली तथा ख परुषता पर आधारित विदग्ध प्रिय गौणी अथवा पौरस्त्य शैली काव्य पद्धति के लिए दो आसान सुकर और कठिन दुष्कर यमक और गोमूत्रिका आदि दुष्कर चित्रबंधों के लिए एवं तीन शास्त्र दर्शित प्रस्थान पद्धति के लिए किया गया है। यहाँ मार्ग शब्द में इन सबका समाहार अभिष्ट लगता है। क्रियाविधि शब्द काव्य क्रिया की विधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। वात्स्यायन ने काव्य क्रिया नामक 53वीं कला के अंग के रूप में क्रियाकल्प नामक 56वीं कला बताई है। यशोधर ने इसकी व्याख्या काव्यकरण विधि अर्थात काव्यालंकार की है। यहाँ क्रियाविधि शब्द से वात्स्यायन के क्रियाकल्प को ही कहा गया है। इसी के लिए काव्य लक्षण शब्द का प्रयोग दंडी कर चुके हैं। वादी जी ने क्रिया से काव्य और विधि से लक्षण लेकर काव्य लक्षण अर्थ किया है।